मेरे प्यारे छात्रों, अब हम अपनी चौथी इकाई के अंतिम चरण पर है। इसके अंतर्गत हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है पद्मावत, उसके समग्र अध्ययन पर विचार करेंगे। माने समग्रता से यह हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी है, इसको हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने इसके पूर्व बार बार बताया है कि पद्मावत हिंदी का दूसरा काव्य है, महाकाव्य है, और अवधी का पहला महाकाव्य। इस महाकाव्य की अपनी विशेषता है दोस्तों, यह सूफी साधना और सूफी मत का प्रतिबिंब माना जाता है। यानी मतलब कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें रत्नसेन और पद्मिनी की कथा के जरिए अपने निर्गुण ईश्वर को प्रेम के मार्ग से पाने का एक उपाय, एक तरीका बताने का प्रयास किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो महाकाव्य है वह एक तरह से इतिहास के आधार पर की गई कल्पना है। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं दोस्तों क्योंकि इसकी जो आधार कथा है, ये आधार कथा हमारी ऐतिहासिक कथा है। कभी आप इतिहास में झांकोगे तो जो विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए थे, उसमें एक आक्रांता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये बड़ा निर्मम ऐसा शासक था, हजारों लाखों की संख्या में सैनिक लेकर आता था और बड़े बड़े राजाओं को परास्त करता था। ऐसा बताया जाता है कि एक बार उसने ये चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी, उसकी असाधारण सुंदरता का बखान सुना और उसने प्रण किया कि इसको मैं पाकर ही रहूंगा। ये जो चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी थी, यह रत्नसेन की पत्नी थी और अलाउद्दीन खिलजी के पास इतना बड़ा दलबल, इतनी सारी शक्ति, साधना, साधन और साम्राज्य उसके पास था कि वह चाहता तो दुनिया को भी जीत सकता था। और जब उसने रत्नसेन के पास पद्मिनी को लेकर संदेश भेजा तो रत्नसेन ने स्वाभाविक था कि वह नहीं माना, तो उसका इनकार, रत्नसेन का इनकार खिलजी को नागवार गुजरा और उसने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। महीनों तक घेरने के बाद भी रत्नसेन माना नहीं। तब जाकर उसने बताया कि एक काम करो, क्या पद्मिनी को देना नहीं चाहते तो कम से कम उसके दर्शन तो दे दो। फिर उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये रत्नसेन रजपूत राजा था और रजपूत राजा होने के कारण अपनी पत्नी का दर्शन किसी पराये पुरुष को, और वह भी पराये धर्म के पुरुष को, उसके दर्शन देना अपनी बेइज्जती मानता था। तो समझौता ये हो गया कि जिस प्रकोष्ठ में अलाउद्दीन प्रवेश करेगा उसके परली तरफ पद्मिनी बैठेगी और आईने में अलाउद्दीन खिलजी उसके दर्शन करेगा और उल्टे पैर निकल जाएगा, वापस लौट जाएगा। जैसे कि योजना बनी थी, वह चित्तौड़गढ़ के महल में आता है और पद्मावती को देखकर, पद्मिनी को देखकर वह लट्टू हो जाता है। और फिर वह रत्नसेन को जो शब्द उसने दिया था, उस शब्द को भूलकर वह रत्नसेन को गिरफ्तार करता है और रत्नसेन और पद्मावती को लेकर वह दिल्ली वापस लौटता है। ऐसी एक मूल प्रेम कथा रजपूतों के इतिहास में है। उस इतिहास को पकड़ लिया और उसके आधार पर ये पद्मावत काव्य की रचना है ना, इस प्रबंध काव्य का मूलाधार हमारा एक प्राचीन ऐतिहासिक आख्यान है जिस आख्यान पर ये कथा चलती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये पद्मावत महाकाव्य ये सिर्फ ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं है। ये सिर्फ ऐतिहासिक महाकाव्य होता तो इस ऐतिहासिक महाकाव्य में चमत्कार नहीं आते। ये ऐतिहासिक महाकाव्य होता तो उसमें प्राणी पक्षी वगैरह के चरित्र नहीं आते। तो ये बताया गया है कि यहां कवि की प्रतिभा है। दुनिया भर में वह साहित्य दोस्तों श्रेष्ठ माना जाता है कि हकीकत को कवि कल्पना के जरिए ऐसा आकर्षक बनाता है कि वह कल्पना भी कभी कभी हकीकत लग जाए। हमारा ये जो नायक कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, उसने पद्मावत नामक हमारे पाठ्यक्रम में लगे इस महाकाव्य में कल्पना और इतिहास का ऐसा सुंदर मेल किया है कि पता नहीं चलता कि इसमें कल्पना कौन सी है और इतिहास कौन सा है। और ये सफलता मलिक मोहम्मद जायसी को किस लिए मिली, तो सूफी संत अपनी इन प्रेमाख्यानों को जिस मसनवी शैली से रखते हैं, तरह तरह के खंडों में उसका विभाजन होता है। मैं बाद में आपको बताने वाला हूं कि हमारे इस पद्मावत में करीबन 58 खंड है। इन 58 खंडों में कवि अपनी मूल छोटे आकार की इस कथा को कैसे विस्तारित करता है कल्पना के बल पर, इतिहास के एक आख्यान को कल्पना से कैसे विस्तारित कर देता है और कैसे रोचक बनाता है, इसकी सुंदर मिसाल यह हमारा अवधि का पहला महाकाव्य है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्राचीन काव्य शास्त्र में महाकाव्य की कुछ कसौटियां बताई है कि क्या क्या उसमें बातें होती है, कि उसका ऐतिहासिक होना जरूरी है, उसका नायक राज परिवार से आना जरूरी है, उसमें सरगुण की रचना होनी चाहिए, नाटक की तमाम संधियों का उसमें प्रतिबिंब होना चाहिए, उसकी कथा वस्तु यथार्थ होनी चाहिए, उसका रस श्रृंगार वीर जैसा इकरस विस्तार उसमें होना चाहिए, मंगलाचरण सज्जन प्रशंसा दुर्जन निंदा जैसे तत्व उसमें होने चाहिए। इन सारे तत्वों के आधार पर यदि हम अपने इस लक्ष्य ग्रंथ पर गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस हमारे महाकवि ने इन सारे तत्वों के आधार पर इस पद्मावत को खरा उतरने की जद्दोजहद की। ऐसी कोई भी कसौटी, ऐसा कोई भी लक्षण आपको यहां कमजोर दिखाई नहीं देगा या अनुपस्थित दिखाई नहीं देगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सारी काव्य शास्त्रीय कसौटियों घटकों को लेकर अपने ग्रंथ को उस पर खरा उतारना, इसमें कवि को काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ऐसी सफलता इतिहास में किसी कवि को मिलती है। हर कवि को दोस्तों महाकवि की उपाधि नहीं दी जाती। जो कवि काव्य शास्त्रीय कसौटियों पर उतरता है और अपनी असाधारण प्रतिभा के दर्शन कराते हैं, जैसे मैं लगियात उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि दो अलंकार है अन्योक्ति और समासोक्ति, इनका जो सुंदर समा इस पद्मावत नामक प्रेमाख्यान काव्य में हमें दिखाई देता है वह तो कवि की प्रतिभा का एक सबूत है। ऐसी कितनी सारी बातें हमारे इस लक्ष्य ग्रंथ में पाठ्य पुस्तक में आपको दिखाई देगी। और इसके आधार पर मैं आपको प्रारंभ में ही बताना चाहूंगा कि पद्मावत एक ऐसा महाकाव्य है कि जिस महाकाव्य ने हिंदी की लेखन परंपरा को बदल दिया और जो हम सिर्फ सीधे दर्शन से कोई बात बताते थे, सीधे दृष्टांतों से जो बात बताते थे, वो कथाओं के जरिए और प्रभावी और बेहतर ढंग से रखने की जो परंपरा, जो योगदान मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में दिया है, आज भी हमारा हिंदी साहित्य उसका ऋणी इसलिए है कि पद्मावत से लेकर माने 16वीं शताब्दी से लेकर आज हम 21वीं सदी में यात्रा कर रहे हैं। मैं आपको मेरे अपने अल्प अध्ययन के आधार पर बताना चाहूंगा कि इतने वर्षों के बाद भी जब भी महाकाव्य लिखा जाता है तो आज का कवि जिन इने गिने महाकाव्यों को अपने सामने रखता है उसमें पद्मावत होता है। पद्मावत पर गौर किए बगैर आज की तारीख में भी कोई कवि श्रेष्ठ महाकाव्य नहीं लिख सकता, जिसको हम मॉडल कहा करते हैं या हिंदी में हम प्रतिदर्श, एक ऐसा आदर्श कि इसको सामने रखो और मूर्ति गढ़ा दो तब जाकर वह एक संपूर्ण मूर्ति बन जाती है। ऐसा एक सारे तत्वों से युक्त होने वाला काव्य, ऐसी भट्टी से बना हुआ ये उत्पाद है कि जिसको देखकर कोई उसकी प्रतिलिपि बना सके और वो प्रतिलिपि की परंपरा, वो कविता लिखने की जो परंपरा है वो आज भी हम रत्नसेन और पद्मिनी की इस कथा को आदर्श मानकर चलते हैं। एक दूसरी बात पद्मावत में दोस्तों देखी जाती है कि इस कविता में जो प्रेम का मार्मिक वर्णन है, प्रेम के जितने सारे पक्ष और प्रसंग प्रेम के अंदर होते हैं उन सब का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण इस कवि का रहा, तब जाकर आपको ऐसा दिखाई देगा कि पद्मावत पढ़ते समय कितना सूक्ष्म निरीक्षण काम आया है। और ऐरा गैरा कवि ये नहीं कर सकता। आज की तारीख में हम जिसको माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो ऑब्जर्वेशन वाले सारे शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर यदि आपको गौर करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव तरंगों का मूल्यांकन, निरीक्षण, उसकी अभिव्यंजना, इन सब कसौटियों के आधार पर यह हमारा पद्मावत नाम का जो महाकाव्य है वह सरस उतरता आपको दिखाई देगा। ये जो महाकाव्य है दोस्तों, ये तो श्रृंगार रस का है। जब भी प्रेम की चर्चा आती है तो प्रेम भले वह संयोग का हो और वियोग का हो, रस श्रृंगार जो है वह वियोग में भी होता है, संयोग में भी होता है। जिसको मैं कहूंगा कि उसकी छटाएं अलग अलग होती है, लेकिन उसका लुत्फ, उसका जो मजा, उसकी जो सुंदरता होती है वो मनुष्य को अस्वस्थ बनाए बगैर नहीं रखती। वह आपको इस महाकाव्य को पढ़ते हुए इसकी अनुभूति आए बिना नहीं रहेगी। रस की दृष्टि से इस कविता को हम देखा करेंगे। श्रृंगार तो प्रधान रस है, लेकिन एक प्रसंग है दोस्तों इस महाकाव्य में कि अलाउद्दीन खिलजी रत्नसेन को ठगाकर पद्मिनी को दिल्ली ले जाता है और रत्नसेन को बंदी बनाता है। तब जाकर इसके दो सरदार ऐसे थे रत्नसेन के और पद्मिनी के, जिनका नाम था गोरा और बादल। ये गोरा बादल भेष बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के डेरे में घुस जाते हैं और अपने इस आश्रिता राजा और रानी को छुड़वा लाते हैं। वह भेष बदलकर जाना, उस मुगल सेना का खात्मा करना, इसमें वीर बादल जिस शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हैं वो खंड आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये कवि जिस लगन से श्रृंगार रस की निर्मिति इस कविता में करता है, उसी लगन से, उसी तन्मयता से वो वीर रस का भी प्रयोग करता है। मैं मेरी अपनी अनुभूति आपको बताता हूं कि जब आप गोरा बादल का वर्णन पढ़ोगे तो आज भी आपकी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रहेगी। ऐसा एक संचारी श्रृंगार जैसा वह कर सकता है, वैसे संचारी वीरता भी उसके लेखनी की अपनी विशेषता है। विभिन्न रसों पर हुकूमत, यह हमारे महाकवि की विशेषता रही है दोस्तों। इसलिए जब हम पद्मावत महाकाव्य को आरंभ से अंत तक पढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि हमारे जीवन में जितने नवरस हैं, उन सारे नवरसों की चर्चा आरंभ से अंत तक यदि आप देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आती जरूर दिखाई देगी। इसमें वात्सल्य रस दिखाई देगा, इसमें राक्षस आता है तो विभत्स रस दिखाई देगा। ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य की जिंदगी रोचक तब होती है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कैसी कल्पना करो कि आपकी थाल में तरह तरह के व्यंजन परोसे हैं और सबका स्वाद एक जैसा ही है, यानी सारे व्यंजन तीखे के तीखे हैं। दूसरी थाली परोसी है, उसमें सबके सब व्यंजन मीठे हैं। तीसरी थाली है, उसमें खट्टा है, एक मीठा है, एक तीखा है। अनुभव से आप बताएंगे कि जिस थाल में विभिन्न प्रकार के स्वाद है, विभिन्न प्रकार के रस है, वह थाली आप पसंद करेंगे। विविधता से युक्त जीवन मनुष्य का अपने जीने का एक तरीका और अपने जीने का एक आकर्षण होता है। कोई महाकाव्य आकर्षक तब होता है जब उस महाकाव्य में तरह तरह के रस प्रसंगवश निर्माण होते हैं और वह मनुष्य को प्रभावित और आकर्षित करते हैं। इसमें होने वाले चरित्र और उनके साथ उठने वाले प्रसंग, उनसे शांत रस आता है, वैराग्य आता है, विभत्सता आती है, वात्सल्य निर्माण होता है। तो रस विभिन्नता इस महाकाव्य की दोस्तों एक अपनी नजाकत है, एक अपनी सुंदरता भी है। महाकाव्य में दो तरह का सौंदर्य अक्सर देखा जाता है। एक होता है प्रकृति सौंदर्य, मराठी में जिसको हम निसर्ग सौंदर्य कहते हैं, और दूसरा है चरित्र सौंदर्य, यानी व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का चरित्र। अब आप अनुभव से मुझे बताओ कि इसमें सच्चा सौंदर्य कहाँ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति जैसी सुंदरता मनुष्य के देह में नहीं होती है। मैं तो कभी कभी ऐसा मानता हूं कि प्रकृति की सुंदरता का प्रतिबिंब हमारा चरित्र, हमारी देह है। प्रकृति में जो है उसका प्रतिबिंब हम अपने में पाते हैं। मैं छोटे छोटे उदाहरण सौंदर्य शास्त्र के आधार पर आपको देना चाहूंगा कि हमारे कवि परंपरा से तरह तरह के उपमान देते आए हैं। उसमें आप जानते हैं कि हमारी आंख है, आंख को किसकी उपमा दी जाती है? एक तो मछली की या हिरन की। हिरन और मछली की आंखें आप देखा करेंगे तो वह इतनी पारदर्शक और इतनी सुंदर होती है, ये जिसको हम किसी शिल्प में कोरने की, उकेरने की बात कहती है, ऐसी सुंदर आंखें किसी मछली की या किसी हिरन की आप देखा करेंगे, और विशेषकर हिरनी की या मछली की। ये आंखें इतनी सुंदर होती है, उसका वर्णन कवि परंपरा से करते आ रहे हैं। तो ये मनुष्य की आंखें सुंदर क्यों है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो मछली की आंख सुंदर है, इसलिए मनुष्य की आंख सुंदर है। और ये मछली और हिरन की आंख सुंदर क्यों है? क्योंकि प्रकृति का सारा प्रतिबिंब उनकी आंखों में पड़ा हुआ है। तो यह जो एक सूत्र है सौंदर्य का प्रकृति और मनुष्य को लेकर, उसका हुबहू पालन हमारे ये कवि अपने इस महाकाव्य में करता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि सौंदर्य भले प्रकृति का हो या मनुष्य शरीर का, आजकल की तारीख में हम एक शब्द का प्रयोग मेरे प्यारे छात्रों बार बार करते हैं, वह हिंदी शब्द है व्यक्तित्व, मराठी में उसको व्यक्तिमत्व कहते हैं। इन दो शब्दों का बोध उतना नहीं होगा जितने में तीसरे शब्द का प्रयोग करने पर आपको होगा, पर्सनैलिटी। हम कैसे अंग्रेजीदा बन गए देखो, कि हमें व्यक्तिमत्व का पता नहीं चलता, पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो हमारे सौंदर्य शास्त्र में यह बताया गया है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारा व्यक्तिमत्व, हम कैसे दिखाई देते हैं वह एक हिस्सा है, और कैसे होते हैं वह दूसरा हिस्सा है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि आप दिखना पसंद करोगे या होना पसंद करोगे, उत्तर बड़ा कठिन है। मेरा उत्तर ऐसा है कि दोनों की आवश्यकता है। हमारा ये लक्ष्य कवि दोनों सौंदर्यों की चर्चा अपने महाकाव्य में करता हुआ दिखाई देगा। भले प्रकृति का सौंदर्य हो या व्यक्ति का सौंदर्य हो, वह अंत प्रकृति का भी चित्रण करता है और बाह्य प्रकृति का भी चित्रण करता है। अंत प्रकृति में हमारे मानस की सुंदरता होती है, बाह्य प्रकृति में शरीरी सुंदरता होती है। प्रकृति का भी है दोस्तों, माने निसर्ग का, नेचर का भी ऐसा है। आप किसी पहाड़ को देखते हो, वो एक सुंदरता, और हवा का कोई गंधित झोंका आता है, मलयगिरीचा चंदन गंधित धूप तुला वाहिला पंक्ति में जिस हवा के, जिस बयार के झोंके की बात कवि करता है, वो देखो वो दिखाई नहीं देता, वो प्रकृति का आंतरिक सौंदर्य है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। ये महसूस होने वाला सौंदर्य आंतरिक सौंदर्य है। कोई हमारा दोस्त होता है, देखो वो सुंदर नहीं होता प्रकृति से, माने देहेष्टि से, लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसकी लगन, उसका रिश्ता हमें ऐसा मोह लेता है कि उसे छोड़कर हम अपने मन की बात को कहीं छिपाने रखते हैं। तो ये जो एक अद्वैतता है मैत्री में होने वाली, वो प्रकृति में भी, उसके सौंदर्य में भी एक अद्वैतता होती है कि अंतर बाहर सौंदर्य की चर्चा जो कवि अपनी कविता में करता है, ऐसा बताया जाता है कि वह एक समग्र सौंदर्य हमारे सामने उपस्थित करता है। हम पद्मावत के समग्र मूल्यांकन की जब चर्चा करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में यह लक्ष्य है कि पद्मावत का समग्र मूल्यांकन, ये समग्र मूल्यांकन दोस्तों तब तक पूरा नहीं होता जब अंदर बाहर से हम किसी सौंदर्य को नहीं जान लेते हैं। हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति के तमाम सुंदरता को ये कवि विभिन्न अलंकारों, छंदों आदि से हमारे सामने लाता है। इसमें जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, तारे हैं, चांद है, आकाश है, क्या नहीं है। प्रकृति के सारे तत्वों का प्रतिबिंब आपको पद्मावत में दिखाई देगा, और साथ ही प्रकृति में बदलते ऋतुओं का, षड ऋतुओं का वर्णन, ये परिवर्तन है ना प्रकृति का, ये सारा प्रकृति को सजीव बनाता है। तो सारा सजीव वर्णन आपको जायसी ने पद्मावत में दिया है, और वो पढ़ते समय इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इस कवि की एक आंख कभी चली गई थी बचपन में, इसका एक कान नहीं था, वो काना था, इस बात पर विश्वास नहीं होता। हमारी दो आंखों से जो दुनिया हम नहीं देख सकते, ये काना कवि कैसे देखता है, इस कल्पना से मेरे रोंगटे कभी कभी दोस्तों खड़े होते हैं, और तब जाकर मेरा इस बात पर विश्वास और भी बढ़ जाता है कि जो कवि होता है उसे सिर्फ दो आंखें नहीं होती, उसकी तीसरी आंख होती है भगवान शंकर जैसी। ये तीसरी आंख प्रज्ञा की आंख है, कल्पना के बल पर, प्रतिभा के बल पर, जो न देखे रवि सो देखे कवि, सूरज भी जिसे देख नहीं पाता उसे कवि अपनी कल्पना से, अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रज्ञा से देखता है। ये जो सारे संदर्भ है, ये सारे संदर्भ दोस्तों पद्मावत पढ़ते समय हमें दिखाई देते, विशेषकर हमारा ये लक्ष्य कवि जायसी अपने महाकाव्य पद्मावत में प्रकृति का जो चित्रण करता है उसकी अनुभूति अपने आप में एक सुंदर समा बन जाती है, और मनुष्य एक बार पद्मावत का पाठ करता है तो जब भी उसको फुर्सत होती है दोबारा वो पन्ने पलटने के लिए विवश हो जाता है। ये ताकत होती है किसी कृति की और कृतिकार की दोस्तों। जो बात प्रकृति की है वही उसके चरित्र चित्रण की भी है। पद्मावत में आदर्श प्रेमी है, पद्मावती प्रेमिका है, नागमती हिंदू रमणी है, रत्नसेन आदर्श प्रेमी है, गोरा बादल आदर्श रक्षक और वीर पुरुष है। ये सारा जो चित्रण है जायसी पर और सूफी कवियों पर एक आरोप लगाया जाता है दोस्तों कि ये सारे एक ढर्रे का चरित्र चित्रण करते हैं। इनका सारा चरित्रण एक तरह से इकरा होता है, मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जैसे आप तुलसी का रामचरित मानस पढ़ोगे या प्रभु राम का चरित्र उसमें पढ़ोगे, तो प्रभु राम में कितने सारे पक्ष हैं उसके चरित्र के और व्यक्तित्व के, कि वह एक आदर्श पति है, वह आदर्श भाई है, वह आदर्श पुत्र है। ऐसा व्यक्तित्व का बहुपक्षीय गोफ जो तुलसीदास बुनता हमें दिखाई देता है, ऐसी बहुविधता चरित्र चित्रण में नहीं है। इसका जब मैं विचार करता हूं, इस पर सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि सूफी कवियों का ध्यान विस्तार की ओर ज्यादा होता है, सूक्ष्मता की ओर वे अनदेखी करते हैं और उससे शायद ये दोष उनमें आ जाता है। ऐसा होकर भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार के चरित्रों की विविधता वे अपने पास रखते हैं, उस विभिन्न प्रकार के चरित्रों से एक समग्र वैविध्य चरित्र चित्रण में भी आ जाता है। ये चरित्र चित्रण ये सारे सूफी कवि एक प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा करेंगे तो वो प्रसंगों से करते हैं, संवादों से करते हैं, कभी खुद कभी उसका बखान करता जाता है, जिसको हम इतिवृत्तात्मक ढंग से कहना, विवरण शैली में कहना, ऐसे अनेक ढंग से इन चरित्रों का चित्रण सूफी कवि करते हैं। बस एक छोटी बात अखरती रहती है, शायद वह उस जमाने में ये पक्ष शायद सोच की बात नहीं थी। आज हम ऐसा मानते हैं कि पात्र चरित्र चित्रण वह महान होता है कि जहां लेखक या कवि उस पात्र के मनोदशाओं का वर्णन करता है। ऐसी मनोदशाओं की उथल पुथल का अभाव पद्मावत में दिखाई देता है। बस एक पद्मावती हमारी नायिका का चरित्र चित्रण अपवाद छोड़ दूंगी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि समग्र पद्मावत काव्य, इसका ज्यादातर हिस्सा, इसके ज्यादातर पन्ने, इसकी ज्यादातर पंक्तियां किस पर खर्च हुई होगी, तो वह बस एक छोटी बात है कि रानी पद्मावती के मन में उठने वाले तमाम तरंगों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि यह पद्मावत काव्य और कुछ न होकर एक नारी की मन की उथल पुथल का ये ऐसा ताता सा है, एक ऐसा सोता है, एक ऐसा प्रवाह है कि जो देखते ही बनता है कि नारी के मन में कैसी आशंकाएं आती है, नारी के मन में कैसी जिज्ञासाएं होती है, नारी के मन में कैसा कुतूहल होता है, नारी के मन में कितने रोमांस भरे सपने आते हैं। इन सबको यदि समेट कर पढ़ना है तो पद्मावत जैसा कोई दूसरा आईना, कोई दूसरा दर्पण मुझे दिखाई नहीं देता। दोस्तों, जो बात इस सौंदर्य चित्रण की व्यक्ति और प्रकृति के है, वह सारा चित्रण ये कवि सुंदर सुंदर अलंकारों और छंदों के जरिए करता है, उससे ये काव्य और भी कलात्मक बनता दिखाई देता है। इसकी भाषा विशेषकर अवधि, जैसे हमने पद्मावती के पहले, पद्मावत महाकाव्य के पहले विद्यापति की पदावली देखी, विद्यापति की पदावली की जो भाषा है मैथिली, इस मैथिली भाषा में जो एक नाद माधुर्य है, ऐसा ही नाद माधुर्य दोस्तों तुम्हें अवधि में भी दिखाई देगा। ये दोनों भाषाओं में, माने विद्यापति की पदावली में और जायसी की पद्मावत में, दोनों तरह की भाषाओं को आप गुनने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इन भाषाओं की एक अपनी कर्ण मधुरता है कि मनुष्य पढ़ता जाता है तो अपने आप कल कल की ध्वनि कानों में गूंजने लगती है। ये कल कल की ध्वनि किसी भाषा की कर्ण मधुरता की निशानी है दोस्तों। वह अनुभव आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक छोटी बात मुझे भाषा की कृत्रिमता की लगती है कि यह कवि जबकि पैदाइशी मुसलमान है, जिसके अपनी मादरी जबान मातृभाषा अरबी फारसी है, ऐसा कवि जब ये प्रयास करता है कि मुझे एक हिंदू तहजीब का काव्य लिखना है, तो ये जरूरी होता है कि वह संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करे, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करे। कभी कभी ये महाकाव्य पढ़ते समय मैंने अनुभव किया है कि इस करामत और इस कर्तव्य में कभी कभी भाषा की कृत्रिमता आती हुई दिखाई देती है, लेकिन समय को तरोताजा करना कवि का लक्ष्य होने के कारण मैं इसको नहीं मानता कि वह उस कवि का दोष है, बल्कि मैं तो ये मानूंगा कि वह तो समय का तकाजा था, उस समय की परंपरा थी जिसको ये कवि निभाना चाहता था। मैं और एक बात को पद्मावत के संदर्भ में बताना चाहूंगा, वो यह है कि इस महाकाव्य को पढ़ते समय इसका जो रचना विधान है वो बड़ा व्यापक है दोस्तों। 58 खंड है ना, इन 58 खंडों में हमें क्या क्या दिखाई देता है, कैसे वो इस कथा का विस्तार करता जाता है, यह जब आप देखा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि पारंपरिक महाकाव्य होते हैं, इसके प्रारंभ में ईश्वरीय स्तुति है, ईश्वरीय वंदना है, जिसे मंगलाचरण हम कहा करते हैं, इसका निर्वाह इसमें है। फिर है सिंहल द्वीप वर्णन, मैंने आज जिसको हम श्रीलंका कहा करते हैं, ऐसे द्वीप का वर्णन है कि जहां यह हमारी कथाएं घटती है। फिर जन्मखंड है, हमारे नायक का जन्म कहां कैसे हो गया, और फिर वह प्रकृति के अंदर मानसरोवर खंड में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। फिर अलौकिक तत्वों के निर्माण में वे, ये मैंने हिरामन तोते की बात कही, वो सुआ खंड में चला आता है। महाकाव्य में अक्सर ये देखा गया है कि नायक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा बताना पारंपरिक महाकाव्य तत्वों के अनुसार अनिवार्य माना गया था, तो यहां आपको ऐसा दिखाई देगा कि रत्नसेन के जन्म से लेकर मृत्यु तक की समग्र कहानी ये महाकवि हमें बताता जाता है। फिर बनी राजा खंड आता है, माने ये राजा कैसे बड़ा बना, हो संभाला, वो आता है। फिर एक बहुत सुंदर संवाद इसमें है, नागमती सुवा खंड, यानी वो नागमती और सुवा के बीच रत्नसेन के संदेश का आगमन कैसे होता है, रत्नसेन का न्योता नागमती के पास कैसा आता है, ये पुराने जमाने में कभी आपने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल जैसा महाकाव्यात्मक या नाट्यात्मक काव्य पढ़ा होगा, उसमें भी ये प्रियंवदा है, वह शकुंतला के पास आकर दुष्यंत का संदेश देती है। तो ये दूती और कोई मीडिएटर प्रेम में, आज की तारीख में भी आप देखा करेंगे प्रेकर प्रेसी में जो सेतु बांधने का काम है, तो कोई समान सहेली या समान मित्र करता है, तो वो भूमिका पुरानी इन काल्पनिक कथाओं में ये सुवा वगैरह के माध्यम से या दूती संवाद के माध्यम से करने की संस्कृत कविता की परंपरा यहां पद्मावत में आपको दिखाई देती है। फिर दोस्तों आता है नखशिख खंड, इस महाकाव्य में रानी पद्मिनी या ये पद्मावत की नायिका है ना, इसके नखशिख का वर्णन ये कवि इस ढंग से करता जाता है कि उससे हमें पता चलता है कि यह कवि किन किन बातों का वर्णन करता है। मैं तो पूरा खंड नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बस अवयवों को गिनता जाऊंगा कि जिससे पता चलेगा कि कैसे विस्तार से ये कवि नखशिख वर्णन करता है, सुंदरता के कितने अंगोपांगों पर विचार करता है। वह बरौनियों का श्रृंगार हमें समझाता है, फिर मांग कैसी उसकी है उसका वर्णन करता है, फिर ललाट उसका कैसा है, उसकी भौवे कैसी है, उसके अधर कैसे है, नयन कैसे है, उसकी कटी कैसे है, नासिका कैसी है, बरौनिया कैसी है, उसके उरोज कैसे है, उसकी कटी कैसे है, उसके नितंब कैसे, सब अंगोपांगों का विस्तार से वर्णन वो करता जाता है। और मैं मेरे प्यारे छात्रों आपको बताऊंगा कि यह वर्णन पढ़ते समय कहीं भी अश्लीलता का बोध नहीं होता। मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि सुंदरता वो होती है कि जो आदमी को शर्म न महसूस करने दे। तो ऐसे एक असाधारण और अपवाद सुंदरता इस महाकाव्य में आपको दिखाई देगी। फिर प्रेम के दोनों पक्षों को संयोग और वियोग की चर्चा आपको इसमें दिखाई देगी। सात समंदर खंड में कितनी सारी बाधाओं को पार कर यह हमारा नायक रानी पद्मिनी को पाने के लिए आता है उसका वर्णन है। यानी यहां भक्त ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या जद्दोहद करता है उसकी सारी चर्चा परोक्ष रूप से प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। और ये करते समय कुछ अलौकिक तत्वों का भी आगमन, जैसे कि पार्वती और शंकर की कथा इसमें आती है। हमारे यहां कुछ प्राकृतिक सुंदरता को लेकर कुछ हमारी आख्यायिकाएं जुड़ी है। जैसे कि हमारा ये सिंहल द्वीप है, उसमें राम सेतु की बात चलते कि बानरों ने राम सेतु बनवाया था और राम सीता के पास पहुंचा था। ऐसी जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ये हमारा लक्ष्य कवि उन सारी मैथोलॉजी को, मिथकों को जानता हुआ इसमें दिखाई देता है। फिर वसंत का वर्णन आता है, फिर गंधर्व सेन मंत्री जो एक पात्र है उसकी चर्चा है, और अंत में विवाह वगैरह होकर फिर खिलजी का आक्रमण, फिर उनका बिछो होना, फिर दोबारा मिलन। प्राचीन महाकाव्यों में ये पेशोपेश निर्माण करना, संघर्ष निर्माण करना, ये इसलिए आवश्यक होता था कि पुराने जमाने में लोगों को पढ़ने के लिए काफी समय था। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि पढ़ने के लिए जिंदगी उनके पास पड़ी हुई थी। तो बृहताकार काव्य लिखना उस समय का तकाजा था। ये जो पद्मावत महाकाव्य है ना दोस्तों, मेरे पास अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरे पास इसकी जो कॉपी है वो करीबन 1000 पृष्ठों की ये महाकाव्य की प्रति मेरे पास है। और जब मैं इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि जिस कवि ने इतने विस्तार से ये काव्य लिखा होगा, अपनी जिंदगी के कितने वर्ष उसने इस रचना में गुजारे होंगे, उसके पहले कितना स्वाध्याय उसने किया होगा। आज जिस आसानी से हम इस महाकाव्य को पढ़ते हैं, क्या इतनी आसानी से वो लिखा है? और इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भले मैंने आपके सामने व्याख्यान देकर इसके बारे में रुचि जगाने का काम किया, लेकिन इसका जो मौलिक लुत्फ है, इसका अपना जो गंध है, वह जब तक आप इस मूल रचना को नहीं पढ़ पाएंगे, वो मूल लुत्फ का मजा आप नहीं उठा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन व्याख्यानों के बाद हमारे इस पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में जो जितनी भी मूल कथाएं, मूल पाठ्य पुस्तकें हमने निर्धारित की है, उनको आप मूल रूप में पढ़िए। मेरे ये सारे व्याख्यान, अब तक मैंने जो 12 व्याख्यान आपके सामने दिए, वो तो बस एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए आपके मन में मैं जिज्ञासा जगा सकूं, और भविष्य में मूल में इसको आप पढ़ेंगे। यदि ऐसी जिज्ञासा आप में निर्माण करने में मैं सफल रहा तो मैं मानता हूं कि आपका समय नागा नहीं गया और मेरा भी। धन्यवाद।